राजा मानवतावादी फाउंडेशन, अत्याचारों में सहयोगी और इजराइल की कब्जाधारी शक्ति के रूप में दायित्वों का उल्लंघन। राजा मानवतावादी फाउंडेशन GHF, जिसे फरवरी 2025 में इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से स्थापित किया गया था, का उद्देश्य गाजा पट्टी में 11 सप्ताह के इजरायली नाकाबंदी के बीच मानवतावादी सहायता वितरित करना था, जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी मामलों के समन्वय कार्यालय OCHA की जून 2025 के अनुसार गाजा के 2.3 मिलियन निवासियों में से 80% से अधिक को अकाल की कगार पर पहुंचा दिया है। हालांकि GHF के संचालन ने नागरिकों को विनाशकारी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें मई 2025 से इसके सहायता वितरण स्थलों पर 613 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत और 4200 घायल हुए हैं, जैसा कि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्टि की गई है। ये घटनाएं, जो इजरायली नियंत्रण के तहत सैनिकृत क्षेत्रों में हुई और जिसमें सशस्त्र निजी सुरक्षा ठेकेदार शामिल थे, ने 170 से अधिक मानवतावादी संगठनों, जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स शामिल हैं, को GHF की निंदा करने के लिए प्रेरित किया है, इसे मृत्यु का जाल और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून IHL का उल्लंघन बताया है। यह निबंध कर देता है कि GHF एक आतंकवादी संगठन है और युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार में सहयोगी है, जबकि IHL को कमजोर करता है। यह इजराइल के गाजा में कब्जाधारी शक्ति के रूप में दायित्वों को विस्तार से बताता है, जिन्हें GHF कमजोर करता है, और सक्षम प्राधिकरणों से GHF को नामित करने, प्रतिबंधित करने और प्रतिबंध लगाने, ICC अभियोजक से इसके अधिकारियों और प्रतिनिधियों के लिए प्री ट्रायल चैम्बर से गिरफ्तारी वारंट की मांग करने का आह्वान करता है। कब्जाधारी शक्ति के रूप में इजराइल के दायित्व। इजराइल को 2005 में अपनी वापसी के बावजूद गाजा पट्टी में कब्जाधारी शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह गाजा की सीमाओं, हवाई क्षेत्र, क्षेत्रीय जल और आवश्यक सेवाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखता है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने 2004 में दीवार के निर्माण के कानूनी परिणामों पर अपनी सलाहकारी राय और बाद के संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्टों में पुष्टि की है। 1907 के हेग नियम, 1949 के जेनेवा सम्मेलन और 1977 का अतिरिक्त प्रोटोकॉल इजराइल के कब्जाधारी शक्ति के रूप में दायित्वों को रेखांकित करते हैं, जिनमें शामिल हैं 1. नागरिकों की सुरक्षा, चौथे जेनेवा सम्मेलन GCIV का अनुच्छेद 4 संरक्षित व्यक्तियों को कब्जाधारी शक्ति के नियंत्रण में नागरिकों के रूप में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 27 इजराइल को मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने, फिलिस्तीनियों को हिंसा से बचाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देता है। GHF साइटों पर व्यवस्थित हत्याएं -17 जून 2025 को खान यूनिस में 59 और 16 जून 2025 को रफा के पास 37 इस दायित्व का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि इजराइल का GHF के साथ समन्वय नागरिकों को घातक नुकसान के लिए उजागर करता है। 2. मानवतावादी पहुंच, GCIV का अनुच्छेद 55 इजराइल को कब्जे वाली आबादी के लिए भोजन और चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जबकि अनुच्छेद 59 निष्पक्ष संगठनों द्वारा राहत की सुविधा प्रदान करने का आदेश देता है। 11 सप्ताह का नाकाबंदी, जिसने 80% गाजावासियों के लिए भुखमरी का स्तर पैदा किया, OCHA जून 2025 इस कर्तव्य का उल्लंघन करता है। संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी सहायता और कार्य एजेंसी UNRWA को GHF के 4 सैनिकृत साइटों से बदलकर इजराइल सुरक्षित सहायता वितरण में बाधा डालता है, जो अतिरिक्त प्रोटोकॉल आई के अनुच्छेद 8C का उल्लंघन करता है, जो मानवतावादी कार्यों की रक्षा करता है। 3. सामूहिक दंड का निषेध, GCIV का अनुच्छेद 33 सामूहिक दंड को प्रतिबंधित करता है, जिसमें उन कार्यों के लिए नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वाले उपाय शामिल हैं जो उन्होंने नहीं किए। नाकाबंदी और GHF के घातक संचालन, जो सहायता को प्रतिबंधित करते हैं और सहायता मांगने वालों को हिंसा के लिए उजागर करते हैं, सामूहिक दंड का गठन करते हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य अधिकार पर विशेष दूत ने जून 2025 में उल्लेख किया है। 4. सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण, GCIV का अनुच्छेद 56 इजराइल को स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करके सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने, भुखमरी और बीमारियों को रोकने का दायित्व देता है। GHF का अपर्याप्त सहायता प्रणाली, जो UNRWA की व्यापक राहत की तुलना में अस्पष्ट भोजन वितरित करता है, गाजा के अकाल संकट को और गहरा करता है, इस कर्तव्य का उल्लंघन करता है। 5. गैर भेदभाव और तटस्थता, IHL, जिसमें जेनेवा सम्मेलनों का सामान्य अनुच्छेद 3 शामिल है, नागरिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की आवश्यकता है। GHF का इजराइल के सुरक्षा उद्देश्यों के साथ संरेखण संयुक्त राष्ट्र प्रणालियों को दरकिनार करके कथित हमास प्रभाव का मुकाबला करना तटस्थता को कमजोर करता है, जो महासभा के प्रस्ताव 46/182/1991 में निष्पक्षता और मानवता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इजराइल का इन दायित्वों को पूरा करने में विफलता, जो GHF के समर्थन से और गंभीर हो गई है, नागरिकों को नुकसान और भुखमरी को सुगम बनाती है, IHL का उल्लंघन करती है और अत्याचारों को सक्षम बनाती है। GHF के संचालन, जो इजराइल के नियंत्रण में कब्जाधारी शक्ति के रूप में किए जाते हैं, दोनों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में फंसाते हैं। जो GHF एक आतंकवादी संगठन के रूप में आतंकवाद, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1566/2004 में परिभाषित किया गया है, में ऐसे कार्य शामिल है जो नागरिकों को मारने या गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए किए जाते हैं ताकि जनसंख्या को डराया जाए या कार्रवाई के लिए मजबूर किया जाए, जबकि 1999 का आतंकवाद के वित्त पोषण को दबाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अनुच्छेद 2 उन कार्यों को शामिल करता है जो जनता में आतंक उत्पन्न करते हैं। GHF के संचालन इन मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके 4 वितरण स्थल, जो सैनिकृत क्षेत्रों में स्थित हैं, हताश नागरिकों को उन क्षेत्रों में खींचते हैं जहां वे इजरायली सैनिकों या GHF के सशस्त्र ठेकेदारों से घातक बल का सामना करते हैं। रिपोर्टों में 613 मौतें और 4200 घायल होने की जानकारी दी गई है, जिसमें खान यूनिस में 59 हत्याएं और रफा के पास 37 शामिल हैं। एक पूर्व ठेकेदार का बयान, जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उद्धृत किया, दावा करता है कि GHF के गार्डों ने भीड़ पर गोलीबारी की, जो प्रत्यक्ष भागीदारी का सुझाव देता है। गाजा की भूखमरी संकट के बीच हिंसा का यह पैटर्न फिलिस्तीनियों को डराता है, उन्हें सहायता मांगने से रोकता है और इजराइल के नियंत्रण को मजबूत करता है, जो प्रस्ताव 1566 की आतंकवाद की परिभाषा के अनुरूप है। 3. युद्ध अपराधों में सहयोगी। रोम संयम के अनुच्छेद 1 के तहत युद्ध अपराधों में सशस्त्र संघर्षों के दौरान जानबूझकर हत्या और नागरिकों पर हमले शामिल हैं। जेनेवा सम्मेलनों का सामान्य अनुच्छेद 3 इजराइल हमास जैसे गैर अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में नागरिकों के खिलाफ हिंसा को प्रतिबंधित करता है। GHF के सैनिकृत स्थल, जो इजरायली बलों के साथ समन्वित हैं, ऐसी उल्लंघनों को सक्षम बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट है कि इजरायली सैनिकों को कथित तौर पर निहत्थे सहायता मांगने वालों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था, हारिट्ज की जांच के अनुसार, और 613 मौतों के बावजूद GHF का साइटों को स्थानांतरित न करना सहभागिता का सुझाव देता है। नागरिकों पर हमलों को सुगम बनाकर GHF रोम संयम के अनुच्छेद 25(3)(c) के तहत युद्ध अपराधों में सहायता और उकसावा करता है, जो जानबूझकर उल्लंघनों में सहायता करने के लिए संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराता है। 4. मानवता के खिलाफ अपराधों में सहयोगी। रोम संयम के अनुच्छेद 7 के तहत मानवता के खिलाफ अपराधों में हत्या, उन्मूलन और अमानवीय कार्य शामिल हैं जो नागरिकों के खिलाफ व्यापक या व्यवस्थित हमले के हिस्से के रूप में किए जाते हैं और हमले के बारे में जानकारी होती है। GHF साइटों पर 613 मौतें एक व्यवस्थित हमला गठन करती हैं, उनकी पुनरावृत्ति और पैमाने को देखते हुए घातक क्षेत्रों में संचालन करके और UNRWA की सुरक्षित सिस्टम को प्रतिस्थापित करके GHF जानबूझकर हत्या अनुच्छेद 7(1) और अमानवीय कार्यों अनुच्छेद 7(1)(k) को सुगम बनाता है। संयुक्त राष्ट्र की भुखमरी द्वारा उन्मूलन की चेतावनी अनुच्छेद 7(1)(b) GHF की गाजा में 80% अकाल जोखिम में भूमिका को इन अपराधों से जोड़ती है, क्योंकि यह पीड़ा की स्थितियों को और गहरा करता है। वी नरसंहार में सहयोगी। 1948 की नरसंहार संधि नरसंहार को उन कार्यों के रूप में परिभाषित करती है जिनका उद्देश्य किसी संरक्षित समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करना है, जिसमें हत्या अनुच्छेद 2 या शारीरिक विनाश के लिए गणना की गई स्थितियों को लागू करना अनुच्छेद 2(c) शामिल है। सहभागिता ऐसे कार्यों में सहायता करने से उत्पन्न होती है जिसमें जानकारी हो, अनुच्छेद 3(e) डंडा GHF के संचालन, जो 613 मौतों और 80% अकाल जोखिम के बीच भुखमरी को सक्षम बनाते हैं, फिलिस्तीनियों को नष्ट करने की स्थितियों में योगदान करते हैं। गाजा में 2024 में संभावित नरसंहार पर ICJ का निर्णय इस दावे को मजबूत करता है। नागरिकों को घातक साइटों पर लुभाकर और सहायता को कमजोर करके GHF नरसंहार कार्यों में सहायता करता है, जिससे यह अनुच्छेद 3(e) के तहत सहयोगी बन जाता है। वाई GHF एक मृत्यु जाल और IHL का उल्लंघन। GHF का मॉडल एक मृत्यु जाल है, जो सुरक्षित तटस्थ सहायता वितरण के लिए IHL के जनादेश, जेनेवा सम्मेलन, सामान्य अनुच्छेद 3, अतिरिक्त प्रोटोकॉल 2, अनुच्छेद 18 को कमजोर करता है। UNRWA के 400 सुरक्षित वितरण बिंदुओं के विपरीत GHF के 4 सैनिकृत साइटें अराजक भीड़ पैदा करती हैं, जो नागरिकों को स्नाइपर्स और सशस्त्र ठेकेदारों के सामने उजागर करती हैं। गोलीबारी की रिपोर्ट, जिसमें खान यूनिस में 59 मौतें और रफा के पास 37 शामिल हैं, साथ ही गैर सरकारी संगठनों की आलोचना और एक्सपर्ट पोस्ट जो GHF को हत्या क्षेत्र करार देते हैं, इस घातक डिजाइन को रेखांकित करते हैं। इजराइल के सुरक्षा उद्देश्यों के साथ संरेखित होकर संयुक्त राष्ट्र प्रणालियों को दरकिनार करने और कथित हमास प्रभाव का मुकाबला करने के लिए GHF महासभा के प्रस्ताव 46(182) 1991 के तटस्थता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह उल्लंघन मानवतावादी सहायता को नियंत्रण और नुकसान के तंत्र में बदल देता है, जो इजराइल के कानूनी दायित्वों और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सिद्धांतों को कमजोर करता है। 7. स्विट्जरलैंड में GHF का कानूनी पतन। राजा मानवतावादी फाउंडेशन की पारदर्शिता और संस्थागत वैधता की कमी को तब और पुष्टि मिली जब स्विस फेडरल सुपरवाइजरी अथॉरिटी फॉर फाउंडेशंस SNA 2 जुलाई 2025 को जिनेवा में पंजीकृत GHF की शाखा के खिलाफ परिसमापन कार्यवाही शुरू की। ESA ने स्विस फाउंडेशन कानून के कई उल्लंघनों का हवाला दिया, जिसमें शामिल हैं स्विट्जरलैंड में आधारित कोई बोर्ड सदस्य हस्ताक्षर प्राधिकार के साथ नहीं, कानूनी रूप से आवश्यक 3 से कम बोर्ड सदस्य, कोई स्विस बैंक खाता या वैध पता नहीं, कोई मान्यता प्राप्त ऑडिटिंग निकाय नहीं। GHF ने स्वीकार किया कि इसकी स्विस शाखा एक गैर संचालित आकस्मिक इकाई थी जिसने कभी स्विट्जरलैंड में गतिविधियां नहीं की और पुष्टि की कि यह संचालनात्मक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका डेलावेयर में आधारित है। ESA ने स्विस ऑफिशियल गजट ऑफ कॉमर्स में 30 दिन का विक्टन नोटिस प्रकाशित किया। मई 2025 में ट्रायल इंटरनेशनल जिनेवा में आधारित एक कानूनी गैर सरकारी संगठन ने 2 औपचारिक फाइलिंग प्रस्तुत की जिसमें यह जांच करने की मांग की गई कि क्या GHF के संचालन ने स्विस कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन किया, जिसमें तटस्थता और निष्पक्षता की कमी का हवाला दिया गया। GHF का संरचनात्मक गैर अनुपालन किसी भी सद्भावना की धारणा को समाप्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और स्विस नियामक शासनों के तहत संगठनात्मक वैधता, पारदर्शी शासन, स्थानीय निगरानी और जवाबदेही द्वारा सिद्ध कानूनी मानवतावादी संचालन के लिए एक शर्त है। GHF का इन मानकों को पूरा करने में पूर्ण विफलता इस धारणा का समर्थन करती है कि यह एक दुर्भावनापूर्ण या राज्य द्वारा उपयोग की गई इकाई है जो तटस्थ सहायता वितरण को कमजोर करने के लिए बनाई गई है। 8. कार्रवाई का आह्वान। 1. सक्षम प्राधिकरणों द्वारा नामांकन, प्रतिबंध और प्रतिबंध, संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 377A शांति के लिए एकजुट का हवाला देते हुए महासभा को 10वें आपातकालीन विशेष सत्र को फिर से बुलाना चाहिए ताकि GHF को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए और संपत्ति को फ्रिज करने, यात्रा प्रतिबंध और वित्तपोषण प्रतिबंध के लिए दबाव डाला जाए जिसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, जो गाजा में युद्धविराम प्रयासों के समर्थन को देखते हुए प्राप्त करने योग्य है। राष्ट्रीय सरकारें, राज्य विशेष रूप से अरब लीग, अफ्रीकी संघ और वैश्विक दक्षिण के भीतर को व्यक्तिगत रूप से GHF को राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी कानूनों के तहत आतंकवादी इकाई के रूप में नामित करना चाहिए, इसकी संपत्ति को फ्रिज करना और सहयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए। मिसालों में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट से संबंधित इकाइयों के एकतरफा नामांकन शामिल हैं। क्षेत्रीय निकाय, यूरोपीय संघ, अरब लीग और अफ्रीकी संघ को अपने प्रतिबंध तंत्र का लाभ उठाना चाहिए। 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो के बाद उत्तर कोरिया के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों जैसे उपायों की नकल करते हुए। 2. ICC में आपराधिक जवाबदेही। ICC अभियोजक को रोम संनियम के अनुच्छेद 58 के तहत GHF के नेतृत्व, बोर्ड के सदस्यों और सहायता स्थलों पर घातक संचालन से संबंधित सुरक्षा ठेकेदारों के लिए गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध करना चाहिए। आधारों में शामिल हैं अनुच्छेद 25(3)(c) युद्ध अपराधों में सहायता और उकसावा, अनुच्छेद 7 मानवता के खिलाफ अपराध, अनुच्छेद 6+ नरसंहार संधि का अनुच्छेद 3(e) नरसंहार में सहभागिता। 2015 से फिलिस्तीन की ICC में सदस्यता गाजा पर अधिकार क्षेत्र स्थापित करती है। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का एक प्रस्ताव, जो सहायता स्थलों पर पीड़ितों की जाँच का आह्वान करता है, अभियोजक कार्रवाई के लिए और आधार प्रदान करता है। निष्कर्ष। गाजा में कब्जाधारी शक्ति के रूप में इजराइल हेग नियमों, जिनेवा सम्मेलनों और अतिरिक्त प्रोटोकॉलाय द्वारा नागरिकों की रक्षा करने, मानवतावादी पहुंच सुनिश्चित करने और सामूहिक दंड को रोकने के लिए बाध्य है। GHF के संचालन इजराइल के समन्वय के तहत ने 613 से अधिक मौतों का कारण बना है और 80% से अधिक गाजा वासियों को प्रभावित करने वाली भुखमरी में योगदान दिया है। ये कार्य आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1566, युद्ध अपराध, रोम संनियम अनुच्छेद 1, मानवता के खिलाफ अपराध अनुच्छेद 7 और नरसंहार संधि अनुच्छेद 2 का गठन करते हैं। स्विट्जरलैंड में GHF का कानूनी पतन वैधता की किसी भी कहानी को और तोड़ देता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए, GHF को नामित, प्रतिबंधित और प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और इसके नेताओं को आपराधिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। गाजा के नागरिकों की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए UNRWA की केंद्रीय मानवतावादी भूमिका को बहाल करना महत्वपूर्ण है।